लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम घेब्रियेसस ने दुनिया के प्रमुख औद्योगिकृत देशों के संगठन G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक में कहा कि पूर्व उम्मीदों के अनुसार दुनिया को अब तक कोरोना वायरस महामारी से छुटकारा मिल जाना चाहिए था, मगर अब भी इसके विपरीत वास्तविकता मौजूद है। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक रविवार 5 सितंबर को इटली की राजधानी रोम में हुई, जिसमें महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने ध्यान दिलाते हुए कहा कि बहुत से देशों में अब भी COVID-19 के संक्रमण मामलों और मौतों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा तब हो रहा है जब दुनिया भर में COVID-19 की रोकथाम वाली वैक्सीन के 5 अरब से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, मगर उन 5 अरब टीकों में से लगभग 75% टीके केवल 10 देशों में लगाए गए हैं। उन्होंने कहा अफ्रीका में सबसे कम यानी लगभग 2% टीके लगाए गए हैं और ये स्थिति अस्वीकार्य है। कोरोना वायरस के नए वेरियंट म्यू की नजदीकी तौर पर निगरानी की जा रही है। महामारी विज्ञान संबंधी अपने साप्ताहिक अपडेट में UN एजेंसी ने सचेत किया कि कोरोना वायरस का यह वेरिएंट कोलंबिया और इक्वाडोर में तेजी से फैल रहा है। इस पर वैक्सीनों के कम प्रभावी होने की आशंका जताई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 संकट की पृष्ठभूमि में वैश्विक स्तर पर बीमारियों के खतरों की बेहतर समीक्षा और उनसे निपटने में देशों की मदद करने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक नए केंद्र को स्थापित किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
COVID-19 से बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष सितंबर महीने के अंत तक हर देश में सबसे निर्बल 10% आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था, मगर अफ्रीकी देशों में इस लक्ष्य को पूरा कर पाना कठिन नजर आ रहा है। UN महासचिव के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक।
Of Africa's 54 countries are set to miss the goal of vaccinating the world's most vulnerable 10% against COVID by the end of September.
UN प्रवक्ता बता रहे थे कि सितंबर महीने के अंत तक दुनिया के सबसे निर्बल समुदायों के 10% टीकाकरण के लक्ष्य को अफ्रीका के 54 में से 42 देश पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि सितंबर के अंत तक वैक्सीन की और खुराकों के अफ्रीकी देशों में पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच वैश्विक स्तर पर बीमारियों के खतरों की बेहतर समीक्षा और उनसे निपटने में देशों की मदद करने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक नए केंद्र को स्थापित किया गया है। इस केंद्र में होने वाले विश्लेषण की मदद से विशेषज्ञों और नीति निर्धारकों के लिए दुनिया भर में महामारियों का पूर्वानुमान लगा पाना, उन्हें खोजना और महामारियों के जोखिमों की समीक्षा कर पाना संभव होगा।
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने शुक्रवार को आगाह करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए और नाजुक हालात का सामना कर रहे अफगान लोगों द्वारा सीमा पार शरण मांगने के मद्देनजर अनिश्चितता की स्थिति में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट मंडराता नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस संकट का सामना करने के प्रयासों के तहत धन इकट्ठा करने के खातिर 13 सितंबर को जिनेवा में एक सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने शुक्रवार को जारी एक वक्तव्य में कहा कि इस सम्मेलन के जरिए धन इकट्ठा करने के प्रयासों में तेजी की हिमायत की जाएगी, ताकि मानवीय सहायता अभियान जारी रह सकें। साथ ही निर्बाध मानवीय सहायता जारी रखने देने की अपील भी की जाएगी ताकि जरूरतमंद अफगान लोगों को जरूरी सेवाएं हासिल होती रहें। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के प्रवक्ता बाबर बलोच ने कहा है कि वर्ष 2021 के दौरान ही लगभग 6 लाख अफगान लोग देश के भीतर ही विस्थापित हुए हैं, जिनमें 80% महिलाएं और बच्चे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत वायु सेवा ने गुरुवार को कहा कि अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में जरूरतमंद लोगों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए उड़ानें फिर शुरू की जाएंगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP द्वारा संचालित इन उड़ानों से 160 राहत संगठनों के कामकाज को जारी रखने में मदद मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त कुछ स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भी शुक्रवार को कहा कि तमाम देशों को उन अफगान पत्रकारों व मीडिया कर्मियों को तत्काल सुरक्षा मुहैया करानी होगी जिन्हें अपनी जान का खतरा है और जिन्होंने अपनी सुरक्षा की खातिर विदेशों में पनाह मांगी है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की नई रिपोर्ट में हाल के समय में सामाजिक संस्था प्रणालियों में हुई प्रगति की वैश्विक स्तर पर समीक्षा और COVID-19 महामारी के असर का आकलन किया गया है। UN श्रम एजेंसी की ताजा रिपोर्ट दर्शाती है कि COVID-19 संकट काल में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, मगर इसके बावजूद 4 अरब से अधिक लोगों को अब भी ये उपाय उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में वैश्विक महामारी के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई को असमान और अपर्याप्त बताया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
UN श्रम एजेंसी की ताजा रिपोर्ट वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 सोशल प्रोटेक्शन एट द क्रॉसरोड्स इन परस्यूट ऑफ अ बेटर फ्यूचर में हाल के समय में सामाजिक संरक्षा प्रणालियों में हुई प्रगति की वैश्विक स्तर पर समीक्षा और COVID-19 महामारी के असर का आकलन किया गया है। बताया गया है कि वैश्विक आबादी के महज 47% हिस्से को ही कम से कम एक सामाजिक संरक्षा लाभ उपलब्ध है। यूरोप और मध्य एशिया में संरक्षा उपायों की कवरेज सबसे अधिक है और वहां 84% आबादी को कम से कम एक लाभ हासिल है। अमेरिकी क्षेत्र में भी ये कवरेज वैश्विक औसत से अधिक है, जहां 64% को कम से कम एक लाभ प्राप्त है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए यह आंकड़ा 44%, अरब देशों के लिए 40% और अफ्रीका के लिए 17% है। हर 4 बच्चों में से महज 1 बच्चे यानी 26% को ही सामाजिक संरक्षा लाभ मिलता है। गंभीर विकलांगता का शिकार हर 3 में से 1 यानी 33% व्यक्तियों को विकलांगता भत्ता ही मिल पाता है। बेरोजगारी भत्ते की कवरेज इससे भी कम बताई गई है और दुनिया भर में महज 18% बेरोजगारों को ही कारगर उपाय हासिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 5.5 करोड़ से अधिक लोग मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया की अवस्था में जीवन जी रहे हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रतिष्ठा जैन।
गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट बताती है कि महज 1/4 सदस्य देशों के पास ही इस चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीतियां, रणनीतियां या समर्थन योजनाएं तैयार हैं। डिमेंशिया की अवस्था के लिए ऐसी अनेक प्रकार की बीमारियों व चोटों को वजह बताया गया है जिनसे मस्तिष्क पर असर पड़ता है, जैसे कि अल्जाइमर्स बीमारी या फिर स्ट्रोक। इससे याददाश्त व संज्ञानात्मक क्षमता और रोजमर्रा के जीवन में कामकाज करने की क्षमता पर असर पड़ता है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडहनॉम गेब्रियसिस ने कहा, डिमेंशिया लाखों लोगों से उनकी स्मृतियों, स्वतंत्रता व गरिमा को छीन लेता है, मगर यह बाकी हम सब से भी उन लोगों को छीनता है जिन्हें हम जानते और प्यार करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 65 वर्ष से अधिक उम्र की 8% महिलाएं और 5% पुरुष डिमेंशिया की अवस्था के साथ रह रहे हैं। यह संख्या वर्ष 2030 तक 7.80 करोड़ और 2050 तक 13.90 करोड़ पहुंचने का अनुमान है।
और इसी के साथ हम लोकोपकारी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज के सभी विषय UN हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आया हूँ प्रभु
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। हंगरी के लोग एवं बुडापेस्ट में हो रहे 52वें अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्ट सम्मेलन के प्रतिभागी रविवार के समापन मिस्सा समारोह के लिए संत पापा फ्रांसिस के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। यूकारिस्ट सम्मेलन पूरे जोर पर है, जिसमें पौत्र मिस्सा समारोह, सामूहिक संगीत प्रदर्शनी, विश्वास साक्ष्य और फिल्म समारोहों का एक समृद्ध कार्यक्रम है। सम्मेलन के आयोजकों का कहना है कि यह सभा दुनिया के 1 अरब से अधिक कैथोलिकों के लिए ख्रिस्त जीवन में यूकारिस्ट की केंद्रितता पर ध्यान केंद्रित करने का एक अनूठा अवसर है। बुडापेस्ट का समारोह हंगरी की परंपरा के प्रति आस्था और सम्मान के 1100 साल के इतिहास और देश की कलीसिया एवं राज्य के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की खोज करने का अवसर भी है। वैटिकन में हंगरी के राजदूत श्री एडवर्ड हैब्सबर्ग लोथरिंगन ने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि हंगरी के लोग बुडापेस्ट में संत पापा की उपस्थिति को एक वास्तविक उपहार के रूप में देख रहे हैं। वे रोमांचित, खुश और उत्साहित हैं कि संत पापा फ्रांसिस यूकारिस्ट सम्मेलन के समापन के लिए बुडापेस्ट आ रहे हैं। राजदूत श्री एडवर्ड ने कहा, वास्तव में यूकारिस्ट सम्मेलन के 140 वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि हम यूकारिस्ट सम्मेलन के समापन मिस्सा समारोह का अनुष्ठान करने के लिए संत पापा की उपस्थिति को एक महान उपहार एवं सम्मान के रूप में देख रहे हैं। देश में कार्तिक कलीसिया की भूमिका के बारे में राजदूत एडवर्ड बतलाते हैं कि हंगरी के अन्य धार्मिक समुदायों के साथ साथ कार्तिक कलीसिया भी बहुत दृश्यमान है। उन्होंने कहा, यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि कलीसिया और राज्य निश्चित रूप से एक दूसरे से बहुत स्पष्ट रूप से अलग हैं। कलीसिया और राज्य समाज की भलाई के लिए मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब है कि विभिन्न कलीसियाएं और धार्मिक समुदाय सार्वजनिक स्थानों पर मौजूद हैं और कई स्कूल कलीसियाओं द्वारा भी चलाए जाते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, आप हंगरी में सार्वजनिक पदों पर धार्मिक नेताओं की उपस्थिति को बहुत सामान्य रूप से देखेंगे, कुछ ऐसा जो अक्सर आप यूरोप के अधिकांश पश्चिमी हिस्सों के अन्य देशों में नहीं देखेंगे। राजदूत ने यूरोप और हंगरी के बीच गहरे संबंध पर भी प्रकाश डाला। यह देश यूरोप के मध्य में स्थित है, ऐतिहासिक रूप से यह मित्तल यूरोपा का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा, हंगरी यूरोपीय परियोजना के महत्व के बारे बहुत ही सचेत और जागरूक है। बेरोजगारी परिवार में अशांति और उदासी का बहुत बड़ा कारण है। इसके कारण भविष्य अनिश्चित रहता है।
संत पापा फ्रांसिस ने उदासी और भविष्य की चिंता से परेशान लोगों की याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। उन्होंने 10 सितंबर को एक ट्वीट प्रकाशित कर कहा, आइए हम आज उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो उदासी झेल रहे हैं, क्योंकि वे अकेले हैं अथवा क्योंकि वे नहीं जानते कि उनके लिए भविष्य क्या है, या क्योंकि वे अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। इस तरह कई लोग उदासी झेल रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। छोटी अमाल 3.5 मीटर ऊंची कठपुतली एक सीरियाई बालिका है जो अपने परिवार वालों की खोज में तुर्की से इंग्लैंड की 8000 किलोमीटर की यात्रा पर है। कार्डिनल चर्नी ने कहा कि अमाल हमें याद दिलाती है कि हमारे बीच दुर्बल अप्रवासी और शरणार्थियों से मुलाकात हमें एक नजर भर से बढ़कर मांग करती है। अमाल को 10 सितंबर को संत पेत्रुस प्रांगण लाया गया। यह विस्थापित बच्चों का प्रतीक है जिनमें से कई अपने माता पिता से बिछुड़ गए हैं। छोटी अमाल को हैंडस्प्रिंग कठपुतली कंपनी द्वारा बनाया गया है जिसे संत पेत्रुस प्रांगण में स्थापित अनजान देवदूत स्मारक के निकट लाया गया। इसका स्वागत शरणार्थी एवं अप्रवासी विभाग के उप सचिव कार्डिनल माइकल चर्नी, परोपकार एवं अप्रवासियों के प्रतिनिधि सहायक धर्माध्यक्ष बेनोनी अम्बरोस ने किया। यह पहल यात्रा उत्सव द वॉक का हिस्सा है जो तुर्की सीरिया सीमा के पास गजियान्टेप से शुरू होकर यूनाइटेड किंगडम में मैनचेस्टर तक पहुंचेगा। इस अवसर पर रोम धर्म प्रांत ने एक दावत का आयोजन किया है जिसमें रोम के विभिन्न पल्लियों से बच्चे भाग लेंगे तथा शरणार्थियों द्वारा साक्ष्य दिए जाएंगे। 9 साल की सीरियाई बालिका अमल की विशाल कठपुतली जो विस्थापित बच्चों का प्रतीक है, यह उनके आग्रह की याद दिलाती है, हमें मत भूल जाइए। यह सभी से आंखें ना मूंदने का तत्काल आह्वान है। कार्डिनल चर्नी ने कहा, अमाल बड़ी और सुंदर है और उससे मुलाकात करना खुशी की बात है, किंतु हमें तुरंत याद दिलाती है कि हमारे बीच कमजोर अप्रवासियों, असुरक्षित श्रमिकों और शरण चाहने वालों से मिलने के लिए केवल एक नजर पर्याप्त नहीं है। उनमें से प्रत्येक दुख और सपनों, जरूरतों एवं प्रतिभाओं के अपने सामान के साथ हमारे कान, हमारे दिमाग एवं हमारे दिल की आंखें खोलने और हमारे हाथों को फैलाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छोटी अमाल का स्वागत करते हुए कार्डिनल चर्नी ने गौर किया कि रोम धर्म प्रांत ने तंबू के प्रभावशाली प्रतीक को चुना है जिसमें अब्राहम ने 3 अजनबियों का उदारता पूर्वक स्वागत किया था और वे अजनबी ईश्वर के संदेश वाहक थे। उन अजनबियों ने अब्राहम को अनपेक्षित सुसमाचार दिया था कि अब्राहम को बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। यंगोन के महाधर्मदर्श कार्डिनल चार्ल्स पो ने बुडापेस्ट में जारी अंतर्राष्ट्रीय यूखरिस्त सम्मेलन में 8 सितंबर को अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। उनके संदेश की विषय वस्तु थी यूखरिस्त में ख्रिस्त की उपस्थिति, रचनात्मक धार्य के अवतार। म्यांमार के कातिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन एवं एशियाई कातिक धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स पो ने अंतर्राष्ट्रीय यूखरिस्त कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, यह पेंतेकोस्त के समय के समान है। यहाँ ईश्वर के सभी स्रोत रहस्यात्मक रूप से बह रहे हैं। हम सभी जाति, भाषा और संस्कृति के लोग ख्रिस्त के शरीर के रूप में आकर हमारी एकता का उत्सव मना रहे हैं। कृपा का यह समय विश्व के लिए स्वास्थ्य लाए और हरेक की आत्मा को शांति एवं समृद्धि प्रदान करे। प्रभु, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, मेरे सभी स्रोत आप में हैं। कार्डिनल ने कहा कि यूखरिस्त सम्मेलन वास्तव में एक कैथोलिक विश्वव्यापी सम्मेलन है जो पहली बार प्रेरितों पर पवित्र आत्मा के उतरने की याद दिला रहा है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।